हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाँ, तो क्या सब लोग तैयार हैं आज की चकमक कथा सुनने के लिए? चकमक कथाओं में आज की कहानी है रद्दी सामान, जिसे लिखा है गिरिजा कुलश्रेष्ठ ने। वरुण भैया ने आंगन में बिखरे सामान को इस तरह देखा जिस तरह किसी मरे हुए जानवर को कोई देखता है, और उससे उतनी ही जल्दी छुटकारा पाने की आतुरता भी दिखाते हुए उन्होंने अपना आदेश, जैसा कि वो हमेशा ही करते हैं, मेरी तरफ गुलेल की गोली की तरह फेंका। अरे राजन, जा जल्दी से किसी रद्दी वाले को पकड़ ला और इस सामान को रफा दफा करवा। आजकल रद्दी वाले तो गली मोहल्ले में ऐसे घूम रहे हैं जैसे बरसात में मेंढक और केंचुए। इतना कहते कहते उन्होंने अपनी लंबी नाक ऊपर खींचकर छोटी करते हुए होठ को कुछ इस तरह सिकोड़ा कि नाक के दोनों तरफ नालियां सी बन गईं। ऐसी जटिल मुद्रा वे अक्सर किसी के प्रति गहरी उपेक्षा दिखाने के लिए करते हैं, पर उस समय उनकी उपेक्षा रद्दी सामान के प्रति थी या रद्दी खरीदने वालों के प्रति, कहना मुश्किल था। लेकिन मुझे खुशी थी कि हम सारे रद्दी सामान को अलविदा कहने वाले थे, जिसकी मौजूदगी के कारण हम कभी नयापन महसूस नहीं कर पाए। हर साल दीपावली पर घर की सफाई होती, लेकिन पुराना सामान धूल झाड़ साफ कर वहीं का वहीं जमा दिया जाता था। कम से कम दीपावली पर तो घर को नएपन के साथ जगमगाना चाहिए, है कि नहीं? हमारे पिताजी को चीजों के संग्रह में विशेष रुचि है। घर में कोई भी चीज उनसे पूछे बगैर बाहर नहीं जा सकती, यहां तक कि फटे जूते चप्पल भी हफ्तों महीनों आंगन में इधर से उधर सरकाए जाते रहते हैं, पर कचरे में नहीं फेंके जाते, बाद में वे किसी कोने में या टांड पर सरका दिए जाते हैं। यही बात हर चीज के बारे में लागू होती है।
किसी जरूरतमंद को दे देंगे,
पिताजी का इस संग्रह के पीछे यही एक तर्क रहता है अक्सर। लेकिन पिताजी, जो चीज हमारे काम की नहीं है उसे दूसरे को देना क्या ठीक होगा? भैया कभी कभी पूछ बैठते। पिताजी ऐसे सवालों पर एक ही बात कहते हैं,
आजकल के बच्चों को देखो कितने मुंह जोर हो गए हैं।
एक बार चाचा जी ने पिताजी से पुरानी चीजों के विषय में ही कह दिया था कि ये पुरानी चीजें अब किसी काम की है नहीं, निकाल देनी चाहिए।
लो सुन लो माँ इनकी बात,
पिताजी ने दादी को उकसाते हुए कहा,
पुरानी चीजें इनके लिए बेकार हैं। कल को माँ और फिर हम लोग भी पुराने और बेकार होने वाले हैं।
भाई साहब, मैं तो घर की फालतू और बेजान चीजों के बारे में कह रहा था, चाचा जी ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा।
क्यों, इन फालतू और बेजान चीजों से कभी तुमने काम नहीं लिया है?
पिताजी एक काबिल वकील की तरह अपने प्रतिपक्ष को पछाड़ने के लिए ढेरों दलीलें पास रखते हैं हर वक्त। तुम इन्हें आज फालतू कह रहे हो, पर क्या हमेशा से ही ये चीजें फालतू थीं? हाँ, इन टूटी चप्पलों को ही ले लो, जब तुमने खरीदी थी नहीं थी ना? जी थी, चाचा जी ने कटघरे में खड़े मुजरिम की तरह स्वीकार किया।
और इनकी ये हालत तुम्हारे पहनने के कारण हुई है ना? हुई है ना?
जी हुई है। बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, किसी चीज से हम काम लें और काम की न रहने पर उसे फालतू करार दे दें, क्या यही इंसानियत है?
उफ़ भैया,
चाचा जी ने अधीर होकर कुछ कहना चाहा, पर पिताजी ऐसे मौकों पर किसी को कुछ बोलने देते हैं तुरंत बात काट कर अपनी बात कहते हैं।
सवाल जानदार या बेजान चीजों का नहीं है छोटे, हमारी सोच का है। आज जो सोच बेजान चीजों के लिए है, वही कल इंसानों के लिए भी हो जाएगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ,
पिताजी अपनी हर बात के पीछे ये सवाल जरूर फिट करते हैं। जाहिर है इसका जवाब हर किसी को नहीं में देना पड़ता है, चाहे उनके ये तर्क कितने ही बेतुके या कड़वी गोली की तरह निगलने में तकलीफ दे हों, सब निगलते हैं चुपचाप। इधर दीपावली का त्योहार फिर से दरवाजों पर दस्तक देने लगा था। घरों में सफाई, पुताई, धुलाई और रंगाई जैसे कार्य युद्ध स्तर पर छेड़े जा चुके थे, पर हमारे सामने फिर वही सवाल था, आखिर इस रद्दी सामान को कब और कैसे ठिकाने लगाया जाए। हालांकि दादी के गुजरने के बाद ही हमारे दिमाग में ये विचार सुगबुगाने लगा था, पर हम इतना ही जानते थे कि पिताजी की मौजूदगी में ये काम उतना ही मुश्किल है। वो कहीं आते जाते भी नहीं है, जाते भी हैं तो शाम को वापस।
इतने सारे सामान को निकालना कोई घंटे दो घंटे का काम तो था नहीं। क्या करें, कैसे करें, यही सोचकर हम हैरान थे। संयोगवश पिताजी को 3-4 दिन के लिए बुआ जी के यहां जाना पड़ गया। माँ ने जाते जाते चुपचाप वरुण भैया को समझाया, इस बार रद्दी सामान को जरूर निकाल देना वरुण, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिताजी सामने ही बखेड़ा करते हैं, पीछे कुछ नहीं, और थोड़े बहुत नाराज होंगे भी तो समझा लेंगे, आखिर रद्दी सामान को कहां तक सहेज कर रखेंगे। माँ ने भैया को जब ये विशेषाधिकार दिया तब भैया तो खुश थे ही, पर उनसे भी ज्यादा खुश मैं था। पूरे उत्साह के साथ सामान निकलवाने और छटवाने में लगा रहा। 2 दिन की मेहनत मशक्कत के बाद आंगन में पुरानी चीजों का ढेर लग गया। लोहे लकड़ी के पुराने टूटे संदूक, पेटियां, टूटी कुर्सियां, 2-3 बैग, लालटेन, चरखा, खिलौने, ढेरों कपड़े, दादा परदादा के बर्तन, डिब्बे, डिब्बियां, बोतल, शीशियां, किताबें, पत्रिकाएं और भी तमाम छोटा मोटा सामान।
लोहा प्लास्टिक वाला, 3 टप्पर वाला, कॉपी अखबार वाला।
अचानक मेरा ध्यान भंग हुआ तो मैंने देखा गली में 4 पहियों के ठेले को धकेलता हुआ एक आदमी आंखें बंद कर आसमान की तरफ पूरा मुंह खोलकर चिल्ला रहा था।
ओ रद्दी वाले भैया, रद्दी सामान खरीदोगे?
मैंने उसे पुकारा तो उसने आंखें खोलकर मेरी ओर देखा और चुपचाप मेरे पीछे आ गया।
भैया भैया,
मैं उसे ले आया, बाहर खड़ा है, मैंने उल्लास से चहकते हुए भैया को बताया। मेरा विचार था कि अब भैया मान जाएंगे कि मैं भी कुछ काम करता हूं, पर भैया ने मेरी बात जैसे सुनी ही नहीं। भैया भैया चलो ना, मुझे पिताजी के लौटने का खटका बराबर लगा था, इसलिए मैंने भैया को जल्दी करने को उकसाया, पर वे कुछ खींच कर बोले, रुक जा यार। 7 साल बड़े वरुण भैया जब मुझे इस तरह के दोस्ताना संबोधन से पुकारते हैं तब मैं समझ जाता हूं कि किसी असमंजस में है और उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। क्या बात है भैया, मैंने अपनेपन से पूछा।
मेरे विचार से एक बार और देख लेना चाहिए, कहीं कोई जरूरी सामान चला गया तो बस गया।
2 दिन से हम लोग क्या केवल गीत गाते रहे हैं? हाँ,
भाभी ने भैया की ये बात सुनी तो चुप ना रह सके।
बाहर आदमी खड़ा है, इंतजार कर रहा है बेचारा।
विनी तुम जरा शांत रहोगी है?
भैया ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा।
देखो राज, सामान को बेचना जितना आसान है ना, खरीदना उतना ही मुश्किल। तुम लोग अभी नहीं समझते कि जिंदगी कैसे चलाई जाती है।
जिंदगी का इस रद्दी सामान से क्या ताल्लुक? भैया के इन शब्दों पर मेरी हंसी फूटते फूटते रह गई। लेकिन जब मैंने देखा कि भैया का सारा जोश सामान निकालने का उसी तरह धीमा पड़ गया है जिस तरह सड़क पर बने गतिरोधकों स्पीड ब्रेकर के कारण गाड़ी की गति धीमी हो जाती है, तब मैं शांत हो गया। मैंने भैया की बातों में एक खास बात भी देखी कि न तो ये वाक्य भैया के थे न ही बोलने का लहजा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुंह से कोई और बोलता है और हमें इसका पता ही नहीं चलता। भैया के मुंह से उस समय सरासर पिताजी बोल रहे थे। मैं हैरान, शरीर से यहां न होने पर भी पिताजी हमारे साथ बखूबी मौजूद थे, भैया की जुबान में, उनके विचारों में। और यकीनन इसमें भैया का तो कोई दोष ही नहीं था, और ऐसे में जरूरी था कि हम उनकी बात समझते।
पुरानी चीजों की आज भी बड़ी अहमियत है राज। इस लकड़ी के संदूक को ही देखो, दादाजी के दादाजी ने मात्र 3 रुपयों में खरीदा था, पर क्वालिटी देखो आज भी कितना मजबूत है।
और आजकल के सामान, हजारों की चीजें 6 महीने में खुलने लगती हैं। मैंने बड़ी उदारता से कहा,
फिर रहने देते हैं भैया, रख लेते हैं। हालांकि अच्छे भरे गुब्बारे में सुराख हो जाने जैसी दशा हो गई थी मेरी, लेकिन
ये लोहे का बक्सा देखो, जंग खा रहा है, पर मजबूत वैसा का वैसा ही है।
ये कहकर भैया ने 1-2 मुक्के मार कर दिखाए।
अरे पेंट करवा लेंगे तो नए को मात देखा, देख लेना, है कि नहीं?
मैंने चुपचाप लोहे का बक्सा उठाया और एक तरफ सरका दिया। तभी भैया ने भाभी को खुश करने के अंदाज में कहा,
और विनी ये छोटा संदूक याद है तुम्हें? है? तुम्हारी दादी ने जन्मदिन पर भिजवाया था और लिखा था, बचपन में विनीता अपने खिलौने और गुड्डे गुड़िया इसी में रखा करती थी।
भाभी बिना किसी रुकावट के मुस्कुराई और फिर किसी छोटी बच्ची की तरह मचल कर भैया के हाथ से वो संदूक उन्होंने छीन लिया। अब तो भैया खुलकर आदेश देने लगे,
अरे छोटे ये लकड़ी की पेटियां भी उठाकर रख दो, ठीक है, क्या है कि इनसे अनेक काम लिए जा सकते हैं, चाहो तो सामान भर के रख लो, चाहो तो लिखने के लिए मेज बना लो, और कुछ नहीं तो मिट्टी भरकर गमलों का काम ही ले लो। ये लालटेन देखो, अगर बिजली गुल हो गई तो क्या करेंगे, है? इसे कोई पूछता ही नहीं है, पर बिजली के जाने पर तो यही काम आती है, है कि नहीं?
भैया इस बात को चिंगम की तरह खींच न लें, इसलिए मैंने घबरा कर कहा,
अरे भैया उसमें क्या है, इसे भी रख लेते हैं।
फिर तो जादुई ढंग से सामान छंटने लगा, सबके पीछे दमदार दलीलें थीं।
कुर्सियों की जरा सी मरम्मत करके नई खरीदने की फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है,
ये चरखा और चक्की माँ के जमाने की यादगार हैं, इन्हें मिटाना ठीक नहीं होगा, बैग में केवल चेन ही तो लगानी है, काहे फेंक रहे हो, है? पीतल के बर्तनों में जरा सा टांका लगना है, नए हो जाएंगे। ये सिंगारदान ये तो भाभी के विवाह की निशानी है,
और हाय 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 ये खिलौने, ये तो झूला भैया के बचपन की यादें समेटे हैं। कैसे दे दें?
किताबें किताबें तो सभी के पढ़ने लायक होती हैं, है?
और ये पत्रिकाएं, इनमें बुनाई व्यंजनों के बढ़िया नमूने लिखे हैं,
कैसे फेंक दें? अखबारों को गलाकर माँ बढ़िया टोकरियां और मूर्तियां बना लेगी, और ये पॉलिथिन, इससे भाभी दरी और आसन बनाएंगी, इन जूतों में तो जरा सी सिलाई होनी है, और ये चप्पलें, ये मरम्मत करेंगे तो बरसात में बहुत काम देंगी। हाँ, सारा नाटक वही पुराना था, कहानी संवाद सब कुछ वही पुराना, बस पात्र नए थे। क्योंकि मुझे अब तक इस नाटक में अपनी भूमिका व संवाद समझ में नहीं आए थे, इसलिए मैं हैरान सा चुपचाप खड़ा था। तभी भाभी ने मुझे पुकारा,
राज भैया तुम्हारी ये पैंट शर्ट छोटे जरूर हो गए हैं, पर तुम इन्हें होली पर पहनना, खूब मजेदार लगोगे। हाँ, छोटी सी तंग शर्ट, बिल्कुल चार्ली चैपलिन जैसी, और ऊंचा पैंट, आवारा राज कपूर वैसे लगोगे, और दादाजी की छड़ी और पिताजी वाला हैट लगा लेना, बस मजा आ जाएगा।
भाभी की बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी ही पड़ेगी, और वो ये कि दरवाजे पर खड़े बेचारे रद्दी वाले को लगभग एक घंटा तो अब तक हो चुका था, और बीच में वो 5-10 बार हमें जल्दी करने के लिए पुकार भी चुका था, उसे किसी तरह से संतुष्ट करके चलता करना है, ये मेरा काम था, ये मेरी भूमिका थी। इसीलिए मैंने इधर उधर से कुछ टूटे चिपके डिब्बे डिब्बियां बटोरे और कुछ खाली शीशियां उठाई जिनके ढक्कन गायब थे, कुछ चप्पलें समेटी जिनमें मरम्मत की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और कुछ यहां वहां बिखरे कागज कीले, ये सब समेट कर उसे देने चल पड़ा। अब वो संतुष्ट हुआ या झल्लाया ये तो सवाल ही खैर बेकार है, क्योंकि इससे ज्यादा उसे देने के लिए हमारे पास रद्दी सामान था ही कहां। है ना, सारा का सारा सामान काम का था, यादों से भरा था, और अब भी इस्तेमाल किया जा सकता था। पुरानी चीजों से ये प्रेम हम सभी को कहीं ना कहीं होता है। इस प्रेम पर इतनी सुंदर कहानी, वाकई मुझे तो बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर।
बच्चों कहानी तो हो गई खत्म, पर मजा अब तक आ रहा है कि नहीं? हाँ, और आप सबने इस कहानी से कुछ सीखा भी होगा,
जरूर सीखा होगा,
और कुछ नया सोचा भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये कहानी एकलव्य फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित बाल विज्ञान पत्रिका चकमक से ली गई है। हाँ, हम जल्द ही मिलेंगे कुछ ऐसी ही खास कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।